हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। फिलहाल मिस्टर रायचंद को वहाँ देखकर रणविजय भी वहीं मुस्कुराकर अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया। उसने हल्का सा हेलो मिस्टर रायचंद कहा, क्योंकि उसे भी पता था कि ऐसे समय पर लोग नॉर्मल तरीके से मुबारकबाद देने आते हैं। तभी सिद्धार्थ वहाँ आया। उसने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, क्योंकि सिद्धार्थ के पास रौनित का कॉल आ चुका था और रौनित ने बता दिया था कि झलक ने क्या हंगामा मचा रखा है। इसलिए सिद्धार्थ फटाफट अपने अपार्टमेंट की ओर जाना चाहता था। सिद्धार्थ के लिए ये जन्मदिन कुछ सालों से अलग तरह का रोल ले चुका था। अपने जन्मदिन के अवसर पर वो हमेशा अपनी दादी के साथ समय बितारा करता था, पर अब मजबूरन उसे झलक के पास जाना पड़ रहा था। इस बात का उन्हें थोड़ा मन खिन्न सा लगा था, इसलिए वे दादी से कहकर निकलना चाहते थे। दादी ने जैसे ही देखा कि सिद्धार्थ कहीं जाने की बात कर रहा है, उन्होंने तुरंत सोचा, जरूर झलक के लिए जा रहा होगा। वो तुरंत बोली, हाँ बेटा जाओ। तभी सिद्धार्थ की नज़र अचानक आर्यन के पिता मिस्टर धीरज रायचंद पर पड़ी। वे थोड़ी बातें करने आए हुए थे और उनकी मौजूदगी से माहौल थोड़ा सीरियस सा हो गया। मिस्टर धीरज ने कहा, सिद्धार्थ मैं यहाँ कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ मौजूद रहें। ये सुनकर सिद्धार्थ के माथे पर बल पड़ गए। कहीं न कहीं उन्हें लगने लगा कि जैसे आर्यन ने पहले झलक को अंगूठी देकर जो प्रपोजल किया था, अब वे शादी के बातों के सिलसिले में आए हैं। सिद्धार्थ का रुख अचानक बदल गया और वो मिस्टर धीरज को ऐसे घूरने लगा मानो वो उनका सबसे बड़ा और पुराना दुश्मन हो। फिलहाल रणविजय, जिसे धीरज से कोई खास वास्ता नहीं रहा था, अचानक उनके हरकतों का अर्थ समझने लगा। उसने सोचा, मामला कुछ गड़बड़ है, धीरज को ये सिद्धार्थ इतना खतरनाक लुक क्यों दे रहा है? बचपन से मेरा और इसका मैटर अलग रहा है, पर धीरज को इतने सीरियस वे में क्यों देख रहा है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसीलिए अब रणविजय भी अनजाने में उन लोगों की बातचीत की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। ठीक उसी वक्त उर्वशी खुराया ने कहा, क्या बात है, अगर कुछ ज़रूरी है तो आप हमें बता दीजिए, कुछ भी हो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। वो तुरंत बोले, कोई बिजनेस रिलेटेड बात नहीं है, मैं यहाँ पर्सनल काम से आया हूँ। ये सुनकर तुरंत रणविजय के कान खड़े हो गए कि आखिरकार ये किस पर्सनल काम से यहाँ आया है। तब उर्वशी जी बोली, देखिए आपको जो भी कहना है प्लीज़ साफ साफ कहिए। सिद्धार्थ नहीं चाहते थे कि धीरज अपने मुंह से आर्यन और झलक का नाम एक साथ ले, तो वो तुरंत बीच में बोल पड़े, मिस्टर रायचंद क्या आपको पता नहीं कि आज पार्टी हो रही है? आप पार्टी में भी मिल सकते हैं। अगर हम अभी आपका टाइम देंगे तो बहुत देर हो जाएगी, हमें पार्टी की तैयारी भी करनी है। सिद्धार्थ ने थोड़ी कड़क टोन में कहा। कहीं न कहीं धीरज को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, पर फिर उनकी आंखों के सामने अपनी बेटी और बेटे के चेहरे आ गए। इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि आपका टाइम कीमती है और वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मुझे कुछ ही समय दे दीजिए। उर्वशी ने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, तुम्हें इस तरह से घर आए मेहमानों के साथ मिसबिहेव करने का कोई हक नहीं है। सिद्धार्थ शांत होकर एक तरफ जाकर बैठे। उनकी नज़रें रणविजय पर ठहरी और वे थोड़ा सख्त नज़र से उस तरफ देखने लगे। रणविजय अभी भी अनजान बनकर अपने फ़ोन में व्यस्त था, लेकिन उसका ध्यान अब पूरी तरह उन लोगों की बातचीत पर केंद्रित हो गया था। ठीक उसी वक्त मिस्टर धीरज ने हाथ जोड़कर उर्वशी जी की ओर देखकर कहा, मैं यहाँ झलक और आर्यन की शादी की बात करने आया हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ और रणविजय दोनों के माथे पर बल पड़ गए। थोड़ी देर पहले जो हालात सिद्धार्थ के थे, अब वही भाव रणविजय के चेहरे पर भी आ गए। रणविजय की आंखों का रंग बदलने लगा, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि झलक का नाम आर्यन के साथ जुड़ने पर उसे कितना बुरा लग रहा है। रणविजय मन ही मन तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? हर कोई झलक को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या लोगों को नहीं पता कि वो रणविजय खुराना की है? पर उससे पहले ही उर्वशी जी बोल पड़ी, आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं? आर्यन को तो पूरा शहर जानता है, वो एक नंबर का अय्याशबाज लड़का है और वो लड़का कितना कैरेक्टरलेस है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कैसे सोच सकते हैं? उर्वशी जो उठ खड़ी हुई और बोली, देखिए, हमारा मकसद आपका अपमान करना नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने देंगे। दादी ने पूरा अधिकार जताते हुए कहा, हम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। धीरज रायचंद दादी की बात सुनकर एक पल के लिए थोड़ा शर्मिंदा हुए, पर फिर खुद को संभालते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि आर्यन की समाज में छवि कुछ खास अच्छी नहीं है, पर झलक और आर्यन एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक बार झलक से ही पूछ लीजिए उसकी मर्जी क्या है। मुझे पूरा यकीन है कि वो साफ हाँ कह देगी। ये सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा पूरी तरह चढ़ गया। उसे लग रहा था कि झलक ने पहले ही आर्यन से अंगूठी ले ली है और वो शादी करने के लिए तैयार होगी। यदि झलक से ये पूछा गया तो वो शायद हाँ कह देगी, और यही बात सिद्धार्थ बर्दाश्त नहीं कर सके। गुस्से से भरे सिद्धार्थ ने धीरज की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कहा था ना कि यहाँ बेवजह की बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहीं से चले जाना चाहिए, वरना मैं अपनी सिक्योरिटी बुलाऊंगा। सिद्धार्थ का बदन उस समय गुस्से से कांप रहा था। धीरज रायचंद सिद्धार्थ के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। इतना ही नहीं, पूरा शहर जानता था कि सिद्धार्थ खुराना कितना बेरहम है। धीरज रायचंद सिद्धार्थ के गुस्से को देखकर समझ चुके थे कि अगर उसने जरा भी ज्यादा मुंह खोला तो शायद उसकी लाश ही यहाँ से जाएगी। ये सोचते हुए वो तुरंत खड़ा हुआ और उर्वशी जी की ओर देखकर बोला, मिसेस खुराना, एक बार आप प्लीज झलक से इस बारे में जरूर बात कीजिएगा। और देर न करते हुए वो वहाँ से चला गया। वहीं उर्वशी खुराना अब हैरानी से एक जगह खड़ी रह गईं। फिर सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, तुम्हें इस तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ इस तरह का बर्ताव करने की? और हो सकता है कि झलक वाकई उस लड़के को पसंद करती हो। हमें एक बार झलक से बात करनी चाहिए, आखिर ये उसकी जिंदगी का सवाल है। उर्वशी की ये बात सुनकर रणविजय अपने आप को रोक नहीं पाया। वो तुरंत खड़ा हुआ और दादी की ओर देख कर बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं दादी? आप अच्छी तरह जानती हैं कि झलक नासमझ बच्ची है। अभी वो अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद नहीं कर सकती, और वैसे भी उसे कोई पसंद करता है या नहीं करता ये अलग बात है, लेकिन उसके बारे में बात करना भी सोच समझ कर होना चाहिए। और अगर झलक वाकई आर्यन जैसे लड़के से प्यार करती है तो दादी आप उसे समझाइए और मना करवा दीजिए, क्योंकि आर्यन झलक के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रणविजय अपनी बात पूरी करके वहाँ से जा चुका था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था पूरी तरह डार्क होते जा रहे थे। गुस्से में उसने तुरंत अपने कुछ लोगों को आर्यन वायचंद के बारे में पूरी डिटेल निकालने का इंस्ट्रक्शन दे दिया था। कहीं ना कहीं वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था। मेरे आदमी ठीक से काम कैसे नहीं कर पाए? मैंने साफ कहा था कि झलक के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी लाओ, लेकिन आज तक आर्यन के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया गया? वो अपने आदमियों पर गुस्सा अब जरूर उतारना चाहता था। उधर दादी के पास जाकर सिद्धार्थ बोला, दादी मैं जा रहा हूँ, बाद में आपसे बात करूँगा। दादी उससे पूछना चाहती थीं कि झलक कहाँ है, लेकिन सिद्धार्थ बिना कुछ बोले तेज कदमों से वहाँ से बाहर निकल गया।
वहीं दूसरी ओर झलक का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। उसने अपने अपार्टमेंट में खुद को लॉक कर लिया था। उसने सोच लिया था कि ना तो वो पार्टी में जाएगी, और अगर पार्टी में नहीं जाएगी तो कोई उसे खुराना परिवार का हिस्सा नहीं मान पाएगा।